मेरे आत्मीय मित्रों नमस्कार। आज 18 अक्टूबर 2019 के AFEIS के इस डेली ऑडियो लेक्चर में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, हम लोग अभी जो जनरल स्टडीज का सेकेंड पेपर है मेन एग्जामिनेशन का, उसकी समीक्षा कर रहे थे और कल के ऑडियो में मैंने केवल आपको सिलेबस के बारे में बताया है और जानबूझकर बताया है ताकि जो एग्जामिनेशन का पेपर है उसे आप बहुत अच्छे तरीके से समझ सकें। और इनफैक्ट सच बात यह भी है कि जो आपको इस विषय की तैयारी करनी है उस तैयारी के बारे में आपको बहुत इस स्पष्ट दिशा निर्देश मिल सके, इसलिए इस बात के लिए माफी चाहूंगा कि मैंने पेपर के बारे में कोई बात नहीं की है और मैंने सिर्फ सिलेबस के बारे में बात की है। और इनफैक्ट सिलेबस के बारे में बात करके मैं पेपर के बारे में बात करने की ही भूमिका बना रहा था। तो आइए फ्रेंड्स, अब हम लोग सीधे सीधे जनरल स्टडीज के सेकेंड पेपर पर आते हैं जो 2019 के एग्जामिनेशन में पूछा गया है। पहले देखें कि किस किस हिस्से से कितने कितने नंबर के प्रश्न पूछे गए। आप जानते हैं कि 250 नंबर का पेपर होता है और 20 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसमें से सारे के सारे क्वेश्चन आपको लिखने होते हैं, उत्तर देने होते हैं। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। हम लोगों के समय में इस तरह का चैलेंज नहीं था। हाँ, क्वेश्चन आप नहीं छोड़ सकते थे, लेकिन जैसे मान लीजिए कि क्वेश्चन नंबर 1, तो उसमें एक क्वेश्चन दे दिया या करके फिर उसी में दूसरा क्वेश्चन दे दिया। मतलब आपकी जो चॉइस है इन दोनों में से सिर्फ एक की ही है, लेकिन इनफैक्ट है तो आपके लिए कोई चॉइस अब नहीं रह गई है। आपको सभी प्रश्नों के उत्तर देने हैं और यह एक बहुत बड़ा कारण है जिसकी वजह से जनरल स्टडीज में मार्क्स कम आते हैं। और वैसे हम लोगों के समय में भी ज्यादा मार्क्स नहीं आते थे क्योंकि आप सारे क्वेश्चन सॉल्व करने की स्थिति में होते ही नहीं है, राइट? तो कल मैंने सिलेबस के बारे में बात करके आपको स्पष्ट कर दिया है कि इसकी परिधि क्या है, इसका स्फेयर क्या है। अब आप देखिए कि कितने कितने क्वेश्चन किस किस हिस्से से पूछे गए। मैंने एग्जैक्ट जो हिस्सों का निर्धारण किया है वह आपके सिलेबस के हिसाब से ही नहीं किया है, जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनका जो चरित्र है उसके आधार पर किया है। राजनीति, इसे मैंने राजनीति शब्द कहा है क्योंकि राजनीति में देखिए आपके कहीं ना कहीं गवर्नेंस भी आ जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन भी आ जाता है, पॉलिटी भी आ जाती है, इसीलिए मैंने इसे नाम दिया है राजनीति। अगर आप चाहें तो ये तीनों इसमें लिख सकते हैं, गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी। इसके अंतर्गत दोस्तों 20 में से 9 क्वेश्चन पूछे गए। अब आप देखिए कि ऑलमोस्ट 50% इसने कवर कर लिया। आपको यह भी अच्छे से मालूम है कि जो 1 से 10 तक के प्रश्न होते हैं वो 10-10 नंबर के होते हैं और फिर 11 से 20 तक के जो क्वेश्चंस होते हैं वो 15-15 नंबर के होते हैं। तो एग्जैक्ट आप सच पूछे तो 20 में से सब में बराबर अंक नहीं होते। 9 प्रश्न पूछे गए और इसके तहत 115 मार्क्स थे, 115 मार्क्स। मैं चलिए पिछले साल के का जो पेपर रहा है उससे भी यहां तुलना करते चलूं। देखिए, तुलना करना हमारे लिए बहुत जरूरी होता है क्योंकि जो पिछले साल का जो पेपर होता है और इस साल का जो पेपर है उससे हमें वो शेड पता लग जाता है जो परिवर्तन की ओर ले जा रहा है कि अब क्या सोच रही है यूपीएससी। देखिए, जब यूपीएससी किसी को भी पेपर सेट करने के लिए देती है तो स्वाभाविक तौर पर कुछ निर्देश देती है कि भाई हमारे ये मापदंड हैं, इन मापदंडों को ध्यान में रख करके आप पेपर बनाएं। क्योंकि मैं भी पेपर सेटर रहा हूं, हालांकि यूपीएससी का नहीं लेकिन यूनिवर्सिटी वगैरह का रहा हूं, तो यूनिवर्सिटी ऐसा करती है तो स्वाभाविक तौर पर यूपीएससी भी ऐसा करेगी, करना ही चाहिए, तभी तो सामने वाला समझ सकेगा पेपर सेटर कि हाँ मुझे किस तरीके से करना है। तो जो ठीक पहले का जो पेपर होता है, जैसे हम 2019 की बात कर रहे हैं, तो 2018 का जो क्वेश्चन पेपर है वो डेफिनेटली हमारे लिए इस मायने में काफी मददगार होता है दूसरे सालों की तुलना में, 2017-2016 की तुलना में, इसीलिए मैं 2018 को लेकर चल रहा हूं। तो 2019 में देखिए 9 क्वेश्चन पूछे गए और 115 नंबर के थे, जबकि 2018 में 12 क्वेश्चन पूछे गए थे जो 145 नंबर के थे। इसका मतलब यह हुआ कि जो राजनीति पर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उनकी संख्या में थोड़ी सी कमी आई है। वैसे थोड़ी सी कमी नहीं, मतलब काफी कमी आप कह सकते हैं। 12 क्वेश्चन की जगह 9 क्वेश्चन हो गए और 145 मार्क्स की जगह 115 मार्क्स हो गए। अब देखिए कि सवाल यह है कि जो ये 30 मार्क्स गए वो कहां गए। कहीं ना कहीं उसको दूसरी जगह एडजस्ट किया गया होगा क्योंकि पेपर तो आपका 250 नंबर का है। इसको हमें पकड़ना पड़ता है और इसे पकड़ना बहुत जरूरी है। जरूरी इसलिए है ताकि अब इसका मतलब है कि जो 30 मार्क्स उन्होंने शिफ्ट किए हैं वो उसको ज्यादा वेटेज दिया जा रहा है, वो हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और यूपीएससी जिस तरीके से जिस टॉपिक को ज्यादा वेटेज देगी, बट नेचुरल है कि तैयारी करने वाले स्टूडेंट के रूप में मुझे भी उसे ज्यादा वेटेज देना चाहिए एक रणनीति के तहत। तो ये जो शिफ्ट किया है यूपीएससी ने दोस्तों, ये शिफ्टिंग हुई है इसकी सच पूछिए तो नीति निर्माण या जिसे आप कह लीजिए सोशल जस्टिस की तरफ, सोशल जस्टिस की तरफ और थोड़ा सा गवर्नेंस की तरफ। देखिए जो गवर्नेंस है, गवर्नेंस के दो पार्ट हैं, एक तो सीधे सीधे सरकार, जब हम सरकार की, यहां सीधे सीधे शब्द का मैंने जो इस्तेमाल किया है उसमें आप कैबिनेट और हमारी जो मिनिस्ट्री है, जो सरकार की नीतियां हैं, जो सरकार की योजनाएं हैं, उससे है गवर्नेंस का मतलब। और इसका जो सेकेंड पार्ट होता है वो सिविल सर्वेंट होता है, जिसे आप सीधे सीधे प्रशासन कह सकते हैं। आपके पूरे के पूरे सिलेबस में एक अलग से पॉइंट दिया हुआ है, रोल ऑफ सिविल सर्वेंट इन डेमोक्रेसी, बस केवल इतना दिया है। लेकिन सिविल सर्विसेज के बारे में क्वेश्चन पूछे जाते, सिविल सर्विसेज के बारे में नहीं, सिविल सर्वेंट के बारे में इससे पहले क्वेश्चन पूछे जाते थे, इस बार नहीं पूछे गए हैं। लेकिन गवर्नेंस के तहत और जो सिविल सर्वेंट से जुड़ा हुआ हिस्सा है उसके तहत नीति निर्माण से संबंधित क्वेश्चन पूछे गए हैं, मतलब पॉलिसी मेकिंग, कि पॉलिसी मेकिंग कैसे होनी चाहिए। अब ये जो पॉलिसी मेकिंग का जो हिस्सा है, सच पूछे तो ये थोड़े से दूसरी चीजों से भी जुड़ जाता है, जैसे RTI, राइट टू इंफॉर्मेशन, पार्टिसिपेशन ऑफ द पीपल, इसके बाद फिर सिटीजन चार्टर्स, NGO, इन सब से भी पॉलिसी मेकिंग जुड़ जाती है। क्योंकि एक जब हम गुड गवर्नेंस की बात करते हैं तो गुड गवर्नेंस में क्या है, लोगों का पार्टिसिपेशन होना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, जो प्रशासन है उसमें अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, यही तो गुड गवर्नेंस है ना। तो जब आप नीति बनाएंगे तब उसमें ये गुड गवर्नेंस लेकर के आइए, और साथ ही साथ जो दूसरे स्टेक होल्डर हैं, चाहे वो पब्लिक हो, चाहे वो सिटीजन चार्टर्स हों, NGOs हों, इनको भी शामिल कीजिए। तो नीति निर्माण पर इस बार ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो वो जो 30 मार्क्स वहां आपको कम दिखाई दे रहे हैं उसकी शिफ्टिंग इधर हो गई है, जिसे आप चाहें तो सोशल जस्टिस या सोशल वेलफेयर, गवर्नेंस, सिविल सर्वेंट इसमें डाल सकते हैं। तो आइए अब मैं फिर से शुरू करूं। 115 मार्क्स पॉलिटिक्स से आए हैं, 9 क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसके बाद इंटरनेशनल रिलेशन से 50 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे गए हैं, और नंबर ऑफ क्वेश्चन हैं 4, 50 नंबर इंटरनेशनल रिलेशन पर हैं। 2018 में ज्यादा पूछे गए थे, क्वेश्चन की संख्या थी 5 और मार्क्स थे 65। तो आप देख रहे हैं कि जो सीधे सीधे जिसका रिलेशन पॉलिटिक्स से है उससे कम क्वेश्चन आ रहे हैं, और जिसका रिलेशन उसके प्रैक्टिकल एस्पेक्ट से है उससे ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, और ये आपके सामने ज्यादा बड़ा चैलेंज प्रस्तुत कर रहा है। इसलिए कि जब अगर सीधे सीधे कॉन्स्टिट्यूशन और इंटरनेशनल रिलेशन से क्वेश्चन पूछ लिए जाएं तो आपको किताबों में काफी कुछ चीजें मिल जाती हैं, आपके दिमाग में तथ्य होते हैं, लेकिन जब नीति निर्माण, सोशल वेलफेयर, सिविल सर्वेंट और गवर्नेंस से क्वेश्चन आते हैं तो उनके ज्यादातर उत्तर आपको अपने दिमाग से लिखने होते हैं, और दिमाग से लिखने के लिए आप चीजें कहां से लाएंगे। दिमाग से लिखने के लिए चीजें दो जगह से आती हैं, दो जगह, जगह कौन कौन सी हैं? पहला है आपका सिलेबस, डेफिनेटली आप जब इन सब के बारे में पढ़ेंगे जिनकी चर्चा मैंने अभी की, आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे, गवर्नेंस पढ़ेंगे, सोशल जस्टिस पढ़ेंगे ना, तो आपके दिमाग में एक पृष्ठभूमि से तैयार हो जाएगी कि हाँ ये चीजें ऐसे 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 होती हैं। इसके बाद आप साल डेढ़ साल से, सामान्यतः डेढ़ साल का दौर ले लीजिए, आप बकायदे न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, न्यूज सुन रहे हैं, करंट अफेयर्स की तैयारी कर रहे हैं। करंट अफेयर्स की एक तो आप तैयारी कर रहे हैं यानी कि पढ़ रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं, लेकिन याद रखिए कि हमारा दिमाग एक दूसरे स्तर पर भी काम कर रहा होता है, और वो है ऑब्जर्व करने का। हम सारी की सारी सिचुएशन को ऑब्जर्व भी कर रहे हैं, और ये जो हम ऑब्जर्व कर रहे हैं इसके बारे में हम कोई नोट्स नहीं बना रहे हैं। जैसे देखिए आप पॉलिटिक्स के बारे में जब कमेंट कर देते हैं तो कैसे करते हैं, आपका अपना एक ऑब्जर्वेशन होता है ना। हालांकि ऐसा नहीं कि वो ऑब्जर्वेशन कोई हवा में हो रहा है, जो घटनाएं घट रही हैं, जिन उन घटनाओं के बारे में जो बातें की जा रही हैं, जो लिखा जा रहा है, उनको पढ़ने देखने सुनने के बाद ही आप एक निष्कर्ष निकालते हैं कि अच्छा अच्छा यार ये हो रहा है, अच्छा ऐसे हो रहा है, यही तो आप करते हैं। तो जो आप ऑब्जर्व करते हैं उस ऑब्जर्वेशन से ही आपके ये उत्तर बनते हैं। तो आपको नहीं लग रहा है कि ये थोड़ा सा ज्यादा चैलेंजिंग है? यस मित्रों, ये ज्यादा चैलेंजिंग है। और यहां इसी के साथ ही मैं एक बात और ऐड करना चाहूंगा कि इस बार का जो क्वेश्चन पेपर है जनरल स्टडी सेकेंड का, पिछले बार की तुलना में कठिन है। पिछले बार के अगर आप पेपर को उठा करके देखें तो उसमें स्ट्रेट क्वेश्चन ज्यादा है, स्ट्रेट क्वेश्चन और सीधे सीधे सिलेबस से आपको जुड़े हुए दिखाई देंगे। इस बार के जो क्वेश्चन है, एक तो स्ट्रेट नहीं है, ज्यादातर क्वेश्चंस में स्टेटमेंट दे दिया गया है और स्टेटमेंट देने के बाद फिर आपको निर्देश दिया गया है कि इस स्टेटमेंट के साथ आपको क्या करना है। इस तरह के क्वेश्चंस थोड़े से कठिन हो जाते हैं। दूसरी बात यह कि जो क्वेश्चन पूछे भी गए हैं, है तो सिलेबस से लेकिन आपको उलझा दिया गया है, बहुत सीधे सीधे तरीके से नहीं पूछा गया है। जैसे उदाहरण के तौर पर सेपरेशन ऑफ पावर आप लगातार पढ़ते रहे, सुनते रहे, अब देखिए कि क्या पूछा गया। सेपरेशन ऑफ पावर को समझने की कोशिश कीजिए। क्या आपके विचार में भारत का संविधान शक्तियों के कठोर पृथककरण के सिद्धांत को स्वीकार नहीं करता है, बल्कि यह नियंत्रण एवं संतुलन के सिद्धांत पर आधारित है? व्याख्या कीजिए। चलिए मैं इस पर नहीं जा रहा हूं, इस पर हम लोग बाद में बात करेंगे, लेकिन कुल मिलाकर के यह है कि इस बार का जो क्वेश्चन पेपर है पिछले बार की तुलना में कठिन है, और थोड़ा ही कठिन नहीं है बल्कि काफी कठिन है। हो सकता है कि यूपीएससी को लगा हो कि पिछले बार को ज्यादा ही सरल पेपर आ गया था, तो इस बार थोड़ा सा उसको दुरुस्त किया जाए। दोस्तों, अब है तीसरा और आखिरी हिस्सा जिसे मैंने समाज कल्याण एवं कार्यक्रम नाम दिया है, देना चाहूंगा, या इसमें आप चाहें तो फिर सोशल जस्टिस और जो दूसरे तथ्य इसमें रह जाते हैं आपके सिलेबस में, उन सारी बातों को शामिल कर सकते हैं। और इसके तहत जैसा कि मैंने बताया कि इस बार ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं, टोटल 7 क्वेश्चन इससे आए हैं और 85 मार्क्स, 7 क्वेश्चन 85 मार्क्स। पिछले साल कितने पूछे गए थे? मात्र 3 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन को 7 क्वेश्चन में कन्वर्ट किया गया। सोचिए, 40 मार्क्स को 85 मार्क्स में कन्वर्ट किया गया। तो यहां देख रहे हैं आप, डबल से ज्यादा, यानी कि ऊपर जो इंटरनेशनल रिलेशन और जो आपके पॉलिटिक्स में मार्क्स कम किए गए हैं उनको यहां शिफ्ट कर दिया गया है। तो आप ये कह लीजिए कि ये बहुत बड़ी शिफ्टिंग है। इसका मतलब है कि सेकेंड पेपर की अब तैयारी में आपको अपनी जो अभी तक की पद्धति रही है उसमें परिवर्तन लाना होगा। अगर आप बिल्कुल फ्रेशर हैं तब तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन अगर आप पिछले 2-3 साल से या 1 साल से तैयारी कर रहे हैं तो आपको अपनी रणनीति को बदलना चाहिए। लेकिन बदलनी चाहिए का इस मतलब ये नहीं कि कोई बहुत बड़ा परिवर्तन होना है। देखिए, एक तो आप एग्जाम की तैयारी करते हैं, दूसरा आप सिविल सर्विस की तैयारी करते हैं, तो सिविल सर्विस की तैयारी तो आप उसी पैटर्न पर करते रहिए जिस पैटर्न पर सिलेबस आपको करने के लिए कहता है। यहां जो मैं बात कर रहा हूं वो बेसिकली एग्जाम की तैयारी की बात कर रहा हूं। जब हम एग्जाम की तैयारी करते हैं तो एक रणनीति बनाते हैं। देखिए, हमारी जो आर्मी होती है लगातार अभ्यास तो करती ही रहती हैं, आपने सुना ही है, फिजिकल फिटनेस पे काम करती रहती हैं, लेकिन जब युद्ध होने की स्थिति आएगी तो युद्ध की रणनीति तैयार करते हैं ना सामने वाले को देख करके। तो वही अब आप इस पेपर को देख करके, यही सामने वाला है, आप एग्जाम की रणनीति अपनी तैयार करेंगे, तो उसमें ये परिवर्तन आपको लाना चाहिए। तो दोस्तों, हम लोगों ने इस आज के डेली ऑडियो लेक्चर में इस विषय पर काफी महत्वपूर्ण बातें की हैं। मुझे यकीन है कि इससे थोड़ी सी आप की जो दृष्टि है वो साफ हुई होगी और दिशा निर्देश आपको प्राप्त हुए होंगे। तो अब आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को फ्रेंड्स यहीं समाप्त करने की इजाजत चाहूंगा। नमस्कार।